मेरे चैप्टर भारतीय दर्शनों का सिंहावलोकन का ये छठवां टॉपिक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक थे। सांख्य के अनुसार दो प्रकार के तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। अपने अपने अस्तित्व के लिए पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष है। पुरुष चेतन है, चैतन्य इसका आगंतुक गुण नहीं परम स्वरूप ही है। वस्तुतः पुरुष शरीर मन तथा इंद्रिय से भिन्न है, यह नित्य है। यह सांसारिक वस्तुओं तथा व्यापारों का अवलोकन अलग से ही करता है। यह स्वयं न तो कोई कार्य करता न इसमें कोई परिवर्तन ही होता है। जिस तरह कुर्सी पलंग आदि भौतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए मनुष्य भोगता है, उसी तरह प्रकृति के परिणामों के उपयोग के लिए भोक्ताओं की आवश्यकता है। ये भोक्ता पुरुष है जो प्रकृति से भिन्न है। प्रत्येक जीव के शरीर से संपर्कित एक एक पुरुष है। जिस समय कुछ मनुष्य सुखी पाए जाते हैं, उस समय कुछ मनुष्य दुखी भी रहते हैं। कुछ का देहांत हो जाता है, फिर भी कुछ जीवित रहते हैं। अतः पुरुष एक नहीं, अनेक हैं। प्रकृति इस संसार का आदि कारण है। यह एक नित्य और जड़ वस्तु है। वह सर्वदा परिवर्तनशील है। इसका लक्ष्य पुरुष के उद्देश्य साधन के सिवा और कुछ नहीं है। सत्व रज तथा तम, ये प्रकृति के तीन गुण या उपादान हैं। सृष्टि के पहले ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इन्हें साधारण अर्थ में गुण नहीं समझना चाहिए, ये विशेष अर्थ में गुण कहलाते हैं। जिस प्रकार कोई त्रिगुणी रस्सी तीन डोरियों की बनी होती है, उसी प्रकार प्रकृति तीन तरह के मौलिक तत्वों से बनी हुई है। संसार के विषय सुख दुख या मोह के जनक हैं। वस्तुओं के प्रति सुख दुख या विषाद होने के कारण हम वस्तुओं के तीन गुणों का अनुमान करते हैं। मीठे भोजन में एक ही व्यक्ति को कभी रुचि होती तो कभी अरुचि होती है, या कभी उदास भाव अर्थात रुचि अथवा अरुचि दोनों का अभाव रहता है। एक ही व्यंजन में किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद मिलता है और किसी को बुरा स्वाद मिलता है तथा किसी को कोई स्वाद नहीं मिलता। कारण तथा कार्य में वस्तुतः ऐक्य होता है। कार्य कारण का विकसित रूप है। तेल तिल आदि विशेष प्रकार के बीजों का विकसित रूप है। संसार के सभी विषय परिणाम हैं जिनके कारण सुख दुख या विषाद का अनुभव होता है। हम ऊपर कह आए हैं कि प्रकृति, जिसका दूसरा नाम प्रधान है, सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण है। अतः सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार उसमें सुख दुख तथा विषाद के कारण अवश्य होंगे। सुख दुख तथा विषाद के कारण क्रमशः सत्व रज तथा तम हैं। इस तरह प्रकृति के अंतर्गत सत्व रज तथा तम का अस्तित्व प्रतिपादित होता है। इस तरह प्रकृति के अंतर्गत सत्व प्रकाशक है, रज गतिशील है और कर्म करता है, तम अचल तथा वर्णक या आवरणकारी है। पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्रकृति के तीन गुणों की साम्यावस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट होती है। जगत की सृष्टि इस क्रम से होती है। सत्व का आधिक्य होने से प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। महत इस विश्व का महान अंकुर है। पुरुष का चैतन्य प्रकाश महत के सत्व गुण पर पड़ता है, अतः महत भी चेतन मालूम पड़ता है। इस घटना के कारण मालूम पड़ता है कि प्रकृति मानो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आई हो। इसी के साथ साथ चिंतन का भी प्रादुर्भाव होता है। अतः महत को बुद्धि भी कहते हैं। यही जगत की सृष्टि कारणी बुद्धि है। बुद्धि का रूपांतर अहंकार में होता है। अहंकार अहम भाव या अभिमान को कहते हैं। आत्मा अभिमान के संयोग होने से अपने को कर्ता समझता है, किंतु वस्तुतः आत्मा स्वयं कर्ता नहीं है। अहंकार में जब महतत्व का बाहुल्य होता है तो उससे पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेंद्रियों तथा मन की सृष्टि होती है। मन उभेन्द्रिय है क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान तथा कर्म दोनों संभव होते हैं। अहंकार में जब तम की प्रचुरता रहती है तब उससे तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध पांच तन्मात्र हैं। पांच तन्मात्रों से पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य में सब मिलाकर 25 तत्व हैं। इनमें पुरुष को छोड़कर सभी तत्व प्रकृति के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों का मूल कारण प्रकृति ही है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्र अपने अपने कारणों के परिणाम या कार्य भी हैं और अपने कार्यों के कारण भी हैं। 11 इंद्रियों तथा 5 महाभूत अपने अपने कारणों के केवल कार्य ही हैं। ये स्वयं किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं हैं जिनका स्वरूप इससे भिन्न हो। पुरुष न तो किसी का कारण है, न किसी का परिणाम ही है। अर्थात पुरुष न तो प्रकृति है, न विकृति ही है। पुरुष निरपेक्ष तथा नित्य है, किंतु अविद्या के कारण यह अपने को शरीर, इंद्रिय तथा मन से पृथक नहीं समझता। पुरुष और प्रकृति में अविवेक अर्थात विभेद नहीं करना के कारण हमें दुखों से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने से हम अपने को घायल या अस्वस्थ समझते हैं। हमारे मनोगत सुख तथा दुख आत्मा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम मन तथा आत्मा के भेद भली भांति समझ नहीं सकते। ज्यों ही हमें विवेक होता है, अर्थात ज्यों ही पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार तथा बुद्धि से भेद समझने लगते हैं, त्यों ही हमारे सुखों तथा दुखों का अंत हो जाता है। तब पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग नहीं रहता और यह संसार के घटनाक्रम का साक्षी या दृष्टा मात्र रह जाता है। इस अवस्था को मुक्ति या कैवल्य कहते हैं। शरीर रहते हुए भी मुक्त पुरुष इससे ममत्व हटा लेते हैं, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। वेदांत के बाद जो मुक्त पुरुष का शरीर भी नष्ट हो जाता है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। केवल विवेक ज्ञान होने से ही हमें आत्मज्ञान नहीं होता और न हम अपने दुखों से ही पूर्णतया मुक्त हो पाते हैं। इसके लिए सतत आध्यात्मिक अभ्यास या साधना की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास के लिए तत्व ज्ञान के प्रति पूरी श्रद्धा तथा उसके अनवरत चिंतन की आवश्यकता है। विवेक ज्ञान होने पर हम पुरुष को विशुद्ध चैतन्य एवं तन, मन, देश, काल तथा कार्य कारण से पूर्णतया पृथक समझने लगते हैं। पुरुष अनादि और अनंत है, यह निरपेक्ष, अमर तथा नित्य है। आत्मज्ञान के लिए जो साधना की आवश्यकता है उसका सांगोपांग वर्णन योग दर्शन में दिया जाएगा। सांख्य दर्शन निरीश्वर है, इसके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है। संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूरे संसार के निर्माण के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है। शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील ईश्वर संसार की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण तथा परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते हैं। कारण ही परिणाम में परिणित हो जाता है। ईश्वर संसार में परिणित नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर परिवर्तनशील नहीं माना जाता है। सांख्य के भाष्यकार विज्ञान भिक्षु यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में मानता है। उनका कथन है कि ईश्वर प्रकृति का दृष्टा मात्र है, सृष्टा नहीं। 7वां टॉपिक है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं। योग तथा सांख्य में बहुत अधिक साम्य है। योग सांख्य के प्रमाणों और तत्वों को मानता है। यह सांख्य के 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर को भी मानता है। योग दर्शन का प्रमुख विषय योगाभ्यास है। सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानता योगाभ्यास से ही हो सकती है। योग चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्त की 5 प्रकार की भूमियां हैं। पहली भूमि क्षिप्त कहलाती है, क्योंकि इसमें चित्त सांसारिक वस्तुओं में क्षिप्त अर्थात चंचल रहता है। दूसरी भूमि मूढ़ कहलाती है, क्योंकि इसमें चित्त की अवस्था निद्रा के सदृश अभिभूत रहती है। तीसरी भूमि विक्षिप्त कहलाती है, यह क्षिप्त से अपेक्षाकृत शांत अवस्था है, किंतु बिल्कुल शांत नहीं है। इन चित्त भूमियों में योगाभ्यास संभव नहीं है। चौथी तथा 5वीं भूमियां एकाग्र तथा निरुद्ध कहलाती हैं। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी ध्येय में निविष्ट या केंद्रीभूत रहता है। निरुद्धावस्था में चिंतन का भी अंत हो जाता है। एकाग्र तथा निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक हैं। योग 2 प्रकार का होता है, संप्रज्ञात तथा असंज्ञात। संप्रज्ञात उस योग या समाधि को कहते हैं जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पूर्णतया स्पष्ट ज्ञान होता है। असंप्रज्ञात उस योग को कहते हैं जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध हो जाता है। फलस्वरूप ध्येय विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों के ज्ञान का लोप हो जाता है, केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाती है। योगाभ्यास के 8 अंग हैं जो योगांग कहलाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान, इन आचारों का अभ्यास नियम कहलाता है। आनंद प्रद शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं। नियंत्रित रूप से श्वास ग्रहण करना, धारण तथा त्याग को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम इंद्रिय संयम अर्थात प्रत्याहार है। चित्त को शरीर के अंदर या बाहर की किसी वस्तु पर केंद्रीभूत करने को धारणा कहते हैं। किसी विषय का सुदृढ़ तथा अविराम चिंतन ध्यान कहलाता है। समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में तल्लीन हो जाता है। योग दर्शन को शेषवत सांख्य कहते हैं और कपिलकृत सांख्य को निरीश्वर सांख्य। योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता के लिए तथा आत्मज्ञान के लिए ईश्वर ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर पूर्ण, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्व दोष रहित है। योग के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के लिए निम्नोक्त प्रमाण दिए जाते हैं। जहाँ तारतम्य है वहाँ सर्वोच्च का होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान में न्यूनाधिक्य है, अतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वज्ञता का होना निसंदेह है। जो पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का आरंभ होता है। संयोग का अंत होने पर प्रलय होता है। पारस्परिक संयोग या वियोग पुरुष और प्रकृति के लिए स्वाभाविक नहीं है, अतः एक पुरुष विशेष का अस्तित्व परम आवश्यक है, जो पुरुषों के पाप तथा पुण्य के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति में संयोग या वियोग स्थापित करता है। मेरा 8वां टॉपिक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। मीमांसा को पर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड का युक्ति पर्वक प्रतिपादन करना है। कर्मकांड का आधार वेद है। मीमांसा के अनुसार वेद मनुष्य रचित नहीं, वह अपौरुषेय तथा नित्य है, इसलिए वेद पुरुषकृत दोषों से रहित है। वेद का प्रकाश ऋषियों के द्वारा हुआ है। वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मीमांसा दर्शन में प्रमाणों का सविस्तार विचार हुआ है। इसमें यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि सभी ज्ञान स्वतः प्रमाण है। पर्याप्त सामग्री रहने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों के निर्दोष होने से वस्तुओं के सन्निकट रहने तथा अन्य सहकारी कारणों के उपस्थित रहने से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। पर्याप्त सामग्री रहने से अनुमान भी हो जाता है। जब हम भूगोल की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उस समय शब्द प्रमाण के द्वारा परोक्ष देशों का भी ज्ञान हो जाता है। इन प्रमाणों के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सत्यता हम निर्विवाद मान लेते हैं। इसके लिए हम किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते। यदि ज्ञान में कोई संदेह रहे तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में विश्वास का होना परम आवश्यक है। बिना विश्वास का ज्ञान यथार्थ है। वेद के अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास भी रहता है। अतः वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानों की तरह स्वयं प्रमाण है। उसमें यदि कोई संदेह की उत्पत्ति होती है तो उसका निराकरण मीमांसा की युक्तियों के द्वारा होता है। बाधाओं के दूर हो जाने पर वैदिक ज्ञान स्वयं प्रकटित हो जाता है। अतः वेद की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। वेद का विधान ही धर्म है। वेद जिसका निषेध करता है वह अधर्म है। विहित कर्मों का पालन तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग धर्म कहलाता है। धर्म का आचरण कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करना चाहिए। वेद विहित कर्मों को किसी फल या पुरस्कार की प्रत्याशा में नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें वेद का आदेश समझकर ही करना चाहिए। नित्य कर्मों के निष्काम आचरण से पूर्वाजित कर्मों का नाश होता है और देहांत होने पर मुक्ति मिलती है। इस तरह का निष्काम आचरण ज्ञान तथा संयम की सहायता से ही हो सकता है। प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग तथा विशुद्ध सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ या मोक्ष है। किंतु आगे चलकर मोक्ष से केवल जन्मनाश तथा दुख का अंत समझा जाने लगा है। आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं हो सकता। वेद के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि आत्मा की मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग की कामना या स्वर्ग प्राप्ति निरर्थक हो जाती है। जैन दार्शनिकों की तरह मीमांसक भी आत्मा की नित्यता के लिए स्वतंत्र युक्तियां देते हैं। मीमांसक चार्वाक के इस मत को कि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, इस मत को नहीं मानते, किंतु वे यह भी नहीं स्वीकार करते कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। चैतन्य की उत्पत्ति शरीर के साथ आत्मा के संयोग से होती है, विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेंद्रियों के साथ सहयोग होता है तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। मुक्त आत्मा विदेह होता है तथा चेतना विहीन होता है, किंतु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है। आत्मा जब देह युक्त रहता है तब उसे कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। मीमांसा की एक शाखा के प्रवर्तक प्रभाकर थे। प्रभाकर मीमांसा के अनुसार 5 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द की व्याख्या न्याय तथा मीमांसा में प्रायः एक सी है। उपमान संबंधी केवल एक भिन्नता है। मीमांसा के अनुसार उपमान निम्नोक्त ढंग से होता है। कोई व्यक्ति जिसने हनुमान देखा है जंगल जाता है, वह जंगल में बंदर देखता है और कहता है कि यह बंदर हनुमान के सदृश है। यह उक्ति प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होती है। तत्पश्चात यदि वह व्यक्ति कहे कि मैंने जो अतीत में हनुमान देखा है वह इस बंदर के समान है, तो इसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। यह ज्ञान उपमान के द्वारा होता है, क्योंकि हनुमान वहां उपस्थित नहीं है। जब हम किसी आपात विरोधी का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम अर्थापत्ति की सहायता लेते हैं। यदि कोई मनुष्य दिन में भोजन नहीं करे और वह मोटा होता जाए तो हम अर्थापत्ति से जान पाते हैं कि वह रात में अवश्य भोजन करता है। यदि कोई मनुष्य जीवित हो और घर पर न रहे तो अर्थापत्ति के द्वारा जाना जा सकता है कि वह कहीं अन्यत्र है। मीमांसा की दूसरी एक शाखा कुमारिल भट्ट ने स्थापित की है। भट्ट मीमांसा के अनुसार उपयुक्त 5 प्रमाण के अतिरिक्त एक और प्रमाण है। इस छठे प्रमाण को अनुपलब्धि कहते हैं। किसी घर में प्रवेश करने पर तथा चारों तरफ देख लेने पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस घर में वस्त्र नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वस्त्राभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा हुआ। किसी विषय का प्रत्यक्ष तब होता है जब उस विषय का इंद्रिय के साथ संयोग होता है। उपयुक्त उदाहरण में वस्त्राभाव का ज्ञान हुआ है। अभाव के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं हो सकता, अतः अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा ही होता है। मीमांसा भौतिक जगत को मानती है। भौतिक जगत की सत्ता प्रत्यक्ष से प्रमाणित होती है। मीमांसा बाह्य सत्तावादी है। संसार के अतिरिक्त यह आत्माओं के अस्तित्व को भी मानती है, किंतु यह किसी जगत सृष्टा परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानती। जगत अनादि तथा अनंत है, न इसकी कभी सृष्टि हुई न प्रलय होता है। सांसारिक वस्तुओं का निर्माण आत्माओं के पूर्वाजित कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से होता है। कर्म एक स्वतंत्र शक्ति है जिसमें संसार परिचालित होता है। मीमांसा के अनुसार जब कोई व्यक्ति यज्ञादि कर्म करता है तो एक शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसे अपूर्व कहते हैं। इसी अपूर्व के कारण किसी भी कर्म का फल भविष्य इसी अपूर्व के कारण किसी भी कर्म का फल भविष्य में उपयुक्त अवसर पर मिलता है। अतः इस लोक में किए गए कर्मों के फल का उपभोग परलोक में किया जा सकता है। मेरा नवा टॉपिक है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। उपनिषदों में वैदिक विचारधारा विकास के शिखर पर पहुंच गई है, अतः उपनिषदों को वेदांत कहना अर्थात वेदों का अंत कहना बहुत ही यथार्थ है। जैसा हम पहले भी कह आए हैं कि वेदांत दर्शन का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इसके मूल सिद्धांत को पहले उपनिषदों में पाया गया है, फिर उनको वादरायण ने अपने ब्रह्म सूत्र में संकलित किया है। इसके बाद भाष्यकारों ने सूत्रों के भाष्य लिखे हैं। भाष्यों में शंकर तथा रामानुज के भाष्य अधिक विख्यात हैं। अन्य दर्शनों की अपेक्षा वेदांत दर्शन से, विशेषतः सांकर वेदांत से भारतीयों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ऐसे पुरुष की कल्पना की गई है जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा ब्रह्मांड से भी परे है। इस सूक्त में संसार के जड़ तथा चेतन सभी पदार्थों को, मनुष्यों को तथा देवताओं को उस परम पुरुष का अंग माना गया है। इस ऐक्य भाव का विकास आगे चलकर उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में उसका पुरुष रूप नहीं रहा, उपनिषदों में उसे सत, आत्मन या ब्रह्मन कहते हैं। यहाँ सत, आत्मन तथा ब्रह्मन एकार्थक शब्द हैं। संसार इसी सत से उत्पन्न हुआ है, इसी पर आश्रित है तथा प्रलय होने पर इसी में विलीन हो जाता है। संसार का नानत्व असत्य है, उसकी एकता ही एकमात्र सत्य है। सर्व खलविदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उपनिषदों के ये वाक्य यह सिद्ध करते हैं कि संसार में एक ही सत्ता है और इसका नानत्व असत्य है। आत्मा या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह अनंत ज्ञान तथा अनंत आनंद है। शंकर के उपनिषदों की व्याख्या विस्तार से की गई है। उनके अनुसार उपनिषदों में विशुद्ध अद्वैत की शिक्षा दी गई है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, इसका अर्थ केवल यह नहीं कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सत्ता है ही नहीं, बल्कि ईश्वर के अंतर्गत भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, त्वं तत् असि, अहम् ब्रह्मास्मि, सर्व खलु इदं ब्रह्म, इत्यादि उक्तियां उपनिषद की उक्तियां हैं। यदि ब्रह्म के अंतर्गत अनेक सत्ताओं का समावेश माना जाए तो इन उक्तियों की उपनिषदों की समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह सही है कि कुछ उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्म या आत्मा के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है, किंतु अन्य उपनिषदों में, यहाँ तक कि वेदों में भी संसार की सृष्टि की तुलना इंद्रजाल से की गई है। ईश्वर को माया भी माना गया है जो अपनी माया शक्ति से संसार की रचना करता है। शंकर का कथन है कि यदि परमार्थिक सत्ता एक है तो संसार की सृष्टि वस्तुतः सृष्टि नहीं है। ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार का इंद्रजाल रचता है। बुद्धि वालों के लिए मायावाद को बोधगम्य बनाने के निमित्त शंकर दैनिक जीवन के साधारण भ्रमों की सहायता लेते हैं। कभी कभी रस्सी सांप के रूप में मालूम पड़ती है, सीप को देखकर चांदी का धोखा हो जाता है, ऐसे अनुभव भ्रम कहलाते हैं। सभी प्रकार की भ्रांतियों में एक अधिष्ठान रहता है जो सत्य होता है। ऊपर के उदाहरणों में रस्सी तथा सीप ऐसे ही अधिष्ठान हैं। अज्ञान के कारण ऐसे अधिष्ठानों पर अन्य वस्तुओं का अध्यास या आरोप होता है। अध्यस्त वस्तु सत्य नहीं होती। ऊपर के उदाहरणों में सांप तथा रजत अध्यस्त हैं। अज्ञान से अधिष्ठान का केवल आवरण ही नहीं होता, वरन विक्षेप भी होता है। विश्व की अनेक रूपता की व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है। ब्रह्म एक है, अतः अविद्या के कारण उसमें अनेक की प्रतीति होती है। अविद्या के कारण हम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप नहीं जान सकते हैं, हम उसे नाना रूपों में देखते हैं। बाजीगर एक मुद्रा को कई मुद्राओं में परिणत हुआ दिखलाता है। इस भ्रमात्मक प्रतीति का कारण जादूगर के लिए तो उसकी जादू दिखाने की शक्ति है, किंतु हमारे लिए उसका कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञानवश हम एक मुद्रा को कई मुद्राओं के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्म एक है, फिर भी माया शक्ति के कारण उसके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ हमारा अज्ञान भी ब्रह्म की अनेक रूपता का कारण है। हमें यदि अज्ञान न हो तो हम ब्रह्म की अनेक रूपता के भ्रम में न पड़े। अतः माया और अविद्या वस्तुतः एक है, दृष्टि भेद से तो मालूम पड़ती है। यही कारण है कि माया को अज्ञान भी कहते हैं। कहा जा सकता है कि शंकर विशुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन नहीं कर सके, क्योंकि वे ईश्वर तथा माया जैसे दो तत्वों को मानते हैं। किंतु शंकर के अनुसार माया ईश्वर की ही एक शक्ति है। जो संबंध आग तथा उसके जलाने की शक्ति में है, वही संबंध ईश्वर तथा माया में है। उपयुक्त कथन से मालूम पड़ता है कि ईश्वर माया से विशिष्ट है, किंतु ऐसा कहना भी बहुत समचीन नहीं है। यदि संसार की अनेक रूपता को सत्य माना जाए तथा ईश्वर को संसार की दृष्टि से देखा जाए तो अवश्य ही ईश्वर की प्रतीति सृष्टा या मायावी के रूप में होगी। किंतु जैसे ही संसार के मिथ्या तत्व का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ईश्वर को सृष्टा के रूप में देखना अर्थहीन हो जाता है। जो व्यक्ति जादूगर के खेल से धोखा नहीं खाता, उसके छल को समझता है, उसके लिए वह जादूगर नहीं है। उसके लिए उस जादूगर के पास धोखा देने की कला भी नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य विश्व को पूर्णतया ब्रह्ममय देखता है, उसके लिए ब्रह्म में माया या सृष्टि शक्ति नहीं रह जाती। उपयुक्त विचारों को युक्तपूर्ण बनाने के लिए शंकर दो दृष्टियों का विभेद करते हैं, व्यावहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। व्यावहारिक दृष्टि साधारण मनुष्यों के लिए है जो संसार को सत्य मानते हैं। हमारा व्यावहारिक जीवन इसी दृष्टि पर निर्भर है। इसके अनुसार संसार सत्य है, ईश्वर इसका सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सृष्टा है, रक्षक तथा संहारक है। इस दृष्टि से ईश्वर के अनेक गुण हैं, अर्थात वह सगुण है। शंकर इस दृष्टि के अनुसार ब्रह्म को सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। इनके अनुसार आत्मा एक शरीरबद्ध सत्ता है, इसमें अहम भाव की उत्पत्ति होती है। पारमार्थिक दृष्टि ज्ञानियों की है, जो यह समझ जाते हैं कि संसार माइक है और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। संसार की असत्यता का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म को सृष्टा नहीं माना जा सकता। ब्रह्म के लिए सर्वज्ञता का, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं रहता है। इस पारमार्थिक दृष्टि के अनुसार ब्रह्म निर्विकल्पक तथा निर्गुण हो जाता है, इसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इसके अनुसार शरीर भी भ्रांति मूलक हो जाता है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। यह पारमार्थिक दृष्टि अविद्या के दूर होने पर ही संभव है। अविद्या का नाश वेदांत के ज्ञान होने पर ही होता है। अविद्या को दूर करने के लिए मनुष्य में इंद्रिय तथा मन का संयम, भोग्य वस्तुओं से विराग, वस्तुओं की अनित्यता का ज्ञान तथा मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति के लिए प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को किसी योग्य गुरु से वेदांत का श्रवण करना चाहिए और उसके सिद्धांतों का मनन तथा निधिध्यासन करना चाहिए। तत्पश्चात शिष्य के योग्य हो जाने पर गुरु उसे कहता है, तत्त्वम असि अर्थात तुम ब्रह्म हो। गुरु की इस उक्ति का वह मनन करता है और अंत में उसे साक्षात ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहते हैं। ऐसा ज्ञानी तथा मुक्त जीव शरीर में तथा संसार में रहकर भी अनासक्त रहता है। सांसारिक वस्तुओं को वह असत्य समझता है, उसके प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं होती। वह संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहता है। किसी प्रकार की आसक्ति या किसी प्रकार की भ्रांति उसकी बुद्धि को विचलित या प्रभावित नहीं कर सकती। मिथ्या ज्ञान के कारण वह पहले अपने को ब्रह्म से पृथक समझता था। मिथ्या ज्ञान के दूर होने पर उसके दुखों का भी अंत हो जाता है। जिस तरह ब्रह्म आनंद स्वरूप है, उसी तरह मुक्त आत्मा भी वैसी हो सकती है। उपनिषदों की व्याख्या रामानुज इस प्रकार करते हैं कि ईश्वर ही पारमार्थिक सत्ता है। अचित या अचेतन प्रकृति और चित या चेतन आत्मा ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। इसमें अच्छे अच्छे सभी गुण वर्तमान हैं। ईश्वर में अचित सर्वदा वर्तमान रहता है। ईश्वर ने अचित से इस संसार की उसी प्रकार उत्पत्ति की है जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से अपने जाल की सृष्टि करता है। आत्मा भी सर्वदा ईश्वर में वर्तमान रहते हैं। वे अणु हैं, उनका स्वरूप स्वभावतः चिन्मय है। वे स्वयं प्रकाशमान हैं। कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर युक्त होना ही बंधन है। आत्मा को शरीर से पूरा पूरा संबंध विच्छेद मोक्ष कहलाता है। अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म ही बंधन का कारण है। बंधन की अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। अतः उसके आचरण भी उसी प्रकार के होते हैं। वह इंद्रिय सुख के लिए लालायित रहता है। वह संसार में आसक्त हो जाता है और इसी आसक्ति के कारण उसे बराबर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। वेदांत से मनुष्य को ज्ञात होता है कि मनुष्य का आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। यह ईश्वर का एक अंश है, अतः ईश्वर अस्तित्व ईश्वर पर ही निर्भर है। अनासक्त भाव से वेद विहित धर्मों का आचरण करने से कर्मों की संचित शक्ति नष्ट हो जाती है और अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। साथ साथ यह ज्ञान भी प्राप्त होता है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है जो प्रेम के योग्य है। मनुष्य अहर्निश ईश्वर की भक्ति करने लगता है तथा अपने को ईश्वर में अर्पित कर देता है। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्त को बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्त आत्मा देहांत के बाद कभी जन्म ग्रहण नहीं करता, वह ईश्वर सदृश हो जाता है। ईश्वर के सामने उसका भी चैतन्य विशुद्ध तथा दोष रहित हो जाता है, किंतु ये एक नहीं हो जाते, क्योंकि आत्मा अणु तथा ईश्वर विभू है, अणु विभू नहीं हो सकता।